अजीज बहनों और भाइयों, ये 38 से लेकर 45 तक आयात है। इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला के फजल करम से हम इन आयात का आज तर्जुमा और इनके अंदर कुछ जो मजामीन और हिकमत के जो मोती छुपे हैं उन पे इंशाअल्लाह ताला आज बात करेंगे। याद रख लें कि ये सूरह यूसुफ है। सूरह यूसुफ का हम मुसलसल मुताला कर रहे हैं और हम उस मकाम पर पहुंचे हैं जहां पे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अब जेल के जो है वो अंदर है, और जेल के अंदर फिर जो है वो वहां पे जाहिर है आप अपने एक जो आपका सीरत व किरदार है उसके सबब आप जो है बड़े अच्छे तरीके से पहचाने जाते हैं। कुछ लोग कुछ कैदी जो है वो फिर ख्वाब देखते हैं और ख्वाब से फिर जो है वो समझते हैं कि आप बड़े नेक इंसान हैं, सच्चे इंसान हैं, किरदार से, कौल अमल से, तो आपके सामने जो है वो पेश करते हैं, जो है वो ख्वाब पेश करते हैं। तो फिर आप लास्ट जो आखिरी हमारा सबक था उसमें हमने पढ़ लिया था कि फिर उन्होंने जब ख्वाब पूछा तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बताया कि ठीक है, मैं तुम्हें ख्वाब इंशाल्लाह आज ही बता दूंगा, बस ये जो आपको अगला खाना मिलेगा उस खाने से पहले पहले। लेकिन फिर जाहिर है आप उससे मुतल्लिक उस वक्त के लिए उससे उस वक्त से पहले का जो वक्त है आप जो है या उस जरूरी जो जिसके मुतल्लिक वो लोग बड़े दिलचस्पी जिनको जाहिर थी कि उनके ख्वाब की क्या ताबीर है, तो उस दिलचस्पी को सामने रखते हुए वो या उस मौके से खास मौके से जब ये एक तवज्जो और कंसंट्रेशन का मौका था उनके लिए और तवज्जो का, तो फिर आप उस मौके को इस्तेमाल करना चाहते थे। तो हम देखेंगे इंशाल्लाह ताला आज किस तरीके से उन्होंने फिर इस्तेमाल किया मौके को। और आज का वो ही है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उनको अब वो वक्त गुजर जाता है, यानी वो खाने से पहले उनको वो उनकी ताबीर बता रहे हैं, उनको वो मौका है। इंशाल्लाह आज देखते हैं इसको। वत्तबा इत्तबा जी लफ्ज है पैरवी करना, और तापिश्तू जो है ये फर्स्ट पर्सन के लिए आप इस्तेमाल होता है कोई भी जो लफ्ज होता है। तो वह तब मैंने पैरवी की मिल्लता कौम की, या आप कह लें कि रास्ते की, दीन की, मिल्लत की, आबाई जो मेरे आबा की जो दीन है, जो मेरे आबा की मिल्लत है, मैं दीन की मजहब की मानों में भी आ सकता है कि उसकी मैंने पैरवी की। अब देखें आबा है और आबा के बाद या है, या जो फर्स्ट पर्सन जो है पोजेसिव प्रोनाउन होता है, जैसे आप कहते हैं कि कलमी किताबी, मेरी कलम मेरा किताब, इस तरह आबाई मेरे आबा। तो मैंने अपने जो मैंने पैरवी की अपने आबा के दीन की, उनके मजहब की, इब्राहिम व इसहाक व याकूब, उन्होंने साथ फिर बता। अब पहली दफा हो रहा है देखिए कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने जो अजीम आबाओ अजदाद का जिक्र जो है पैगम्बरों का कर रहे हैं। आपके इल्म में होगा कि अब हमारे सामने पढ़ चुके हैं, इससे पहले वो चाहे उन्हें काफले वाले उन्होंने लिया, फिर वो बिके, फिर उससे पहले दूसरे उसके पास है, तो किसी को कभी नहीं कहा कि मैं जो है देखिए फलां अजीम शख्सियात का जो है फलां का पोता हूँ और बेटा हूँ और जो है फलां, तो आपने नहीं बताया। आप पहली दफा जो है ये दीने जो है तौहीद और तौहीद की तबलीग के लिए आप जो है फिर ये अपने सयाक सबाक अपना जो है पस मंजर पेश कर रहे हैं। मा काना लना, मा काना नहीं है हमारे लिए, लना हमारे लिए नहीं है हमारे लिए, अन के नुशरे को हम शिरक करें, शरीक करें। नॉन पेशनू जो है हम के लिए फर्स्ट पर्सन सेकंड फर्स्ट पर्सन प्लूरल जो है वो है प्रोनाउन, हम शिरक करें बिल्लाह अल्लाह के साथ, हमारे ये नहीं हमारे लिए, ये हमारे लिए जायज नहीं है, ये हमारे हमें जेब नहीं देता, ये मानी हमारे लिए नहीं है तो मतलब हमारे लिए जायज नहीं है कि हम शिरक करें अल्लाह के साथ, शरीक करें। मिन शैन किसी चीज को भी, यानी किसी जरा बराबर किसी चीज को, अल्लाह ताला जरा बराबर भी शिर्क से जो है वो पा के कोई चीज उसके साथ जो है उसमें उसमें शरीक नहीं है, ना उसकी जात में ना उसकी सिफात में। गाले का ये है मिन फजल अल्लाह, अल्लाह का फजल है, ये अल्लाह का फजल है, अलैना हमारे ऊपर, इन हमारे ऊपर, हमारे औजदाद पर, वाला नास और लोगों पर भी, ये अल्लाह ताला का फजल है। कुछ नहीं, ये पैगंबर और ये रास्ता और ये दीन और ये तरीका भेजा, ये हम पर भी अल्लाह का फजल है कि उसने मुझे और उनमें से पैदा किया, उन लोगों में से, और लोगों के ऊपर भी उसने ये भेजे लोगों। वलाकिन, लेकिन, यानी वलाकिन जो है, और लेकिन, ये उर्दू में फिर जो है उसका तर्जुमा किया जाता है लेकिन। अक्सर अन्नास, अक्सर अन्नास लोगों का अक्सर, लोगों की अक्सरियत, लायशकुरून, वो शुक्र नहीं करते, इन्हीं बात को तस्लीम नहीं करते और बात को समझते नहीं है, और फिर ज़ाहिर शुक्र बजा नहीं लाते। या साहिब बस जिसने, या साहिब, अब देखो थोड़ा सा इसकी तरकीब पे तो गौर कर ले। पहले पहले जो लफ्ज़ है या है, ये हरफ निदा होता है किसी को आवाज देने के लिए, या फुलां, या फुलां कहते हैं ये है, इसको हरफ निदा कहते हैं। साहिब आगे जो है साथी के लिए इस्तेमाल होता है, आगे आगे साहिब, या साहिब, साहिबा, ये मेरे, वही है फर्स्ट पर्सन, ये छोटी ये जो है किसी भी चीज के साथ आखिर में लग जाए तो फिर उसको जो है फर्स्ट पर्सन जो है पोजेसिव प्रोनाउन बना देती है, सिंगुलर। मेरे, ए मेरे साथियों, सिजन, सिजन जो है जेल, ए मेरे जेल के साथियों। अब तर्जमों में लिखा होगा, या तर्जमों में जो है जो ज्यादा लफ्जी तर्जमे उनमें लिखा होगा, ए जेल के मेरे दो साथियों, तो दो का कैसे बना है। अब देखिए ये साहिब जो है ये तो हुआ एक साथी, एक रफी, तो असल में ये लफ्ज जो ये जो है ये साहिब जो लफ्ज है असल में ये साहिबान है। आपको पता है कि दो का जो तस्नी, जो तस्निया का सीगा होता है जो दो के लिए होता है, ये अरबी जबान में, सिर्फ अरबी जबान में होता है दो के लिए, बाकी जबानों में ये सिंगुलर होता है, ये प्लूरल होता है, लेकिन अरबी जबान में डुअल भी होता है जिसको तस्निया का सीगा कहते हैं, यानी तस्निया जो है दो का। तो दो के सीगे जो है कलम, कलमान, मुसल, मुसलमान, इस तरह जो है ये जो है, तो ये फिर जो है दो दो के सीगे के लिए जो है होता है, तो साहिबान था ये। लेकिन या की वजह से जो है तो इसको जो है साहिबान पे जो है या ने नसब जो है जबर दी, तो साहिब, साहिबैना हो गया, साहिबान से साहिबैना हो गया, और फिर जो है ये मुजाफ भी हो गया। मुजाफ कैसे हुआ है, आखिर में जान आ गया, मुजाफ मुजाफिले भी हो गया, तो उसकी वजह से फिर जो आखिरी नून है वो गिर गया, तो ये साहिबा, साहिबा या जो है रह गया। तो इस तरीके से ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये नीचे जो अल्फाज जो दूसरे जो है ये ग्रीन या जो है ये लाइट ब्लू व्हाइट कलर में लिखे होते, ये जो है आप के लिए, मतलब आपको याद रखना जरूरी नहीं है, ये एक वजाहत है, तशरीह है कि देखें ये जो लफ्ज था क्या और ये किससे कैसे बना है। ये एक उसूल बाज़ का जो साथी ग्रामर में आगे एडवांस ग्रामर में जो दिलचस्पी रखते हैं वो इसको जो है वो याद रख सकते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये ए जेल के दोनों साथियों, तो दोनों का तर्जमा किधर है, तो ये जो है आपको बताएगा कि ये दोनों, ये असल में ये था, बदल के ये हो गया, इस तरीके से ये फिर बताया जाता है आपको। आप इसे परेशान न हुआ करें, आप सारे मुख्तलिफ साथी मुख्तलिफ लेवल से जो है वो दिलचस्पी रखते हैं, तो जो साथी आगे ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं तो आपके लिए भी पढ़ना, आपके याद रखना कुरान का, कि ये देखें ये लफ्ज जो था ये था, असल में अब ये है, तो इससे जो है कोई हर्ज नहीं है, अगर आप याद कर सकें तो बहुत अच्छी बात है। आ अरबाबुन, ये आ अलग है, ये सवालिया है, इस्तफहामिया है, इंट्रोगेटिव है। आ क्या, अरबाबुन, अरबाब रब की जमा, बहुत सारे रब, यानी मुतफर्रिकून, अलग अलग, मुतफर्रिक की जमा, मुतफर्रिकून है हम, ये जो है अरबाब रब की जमा, हम जी सारे पढ़ते हैं उर्दू में, लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, अरबाब नामों में भी रखे जाते हैं, अगरचे गलत नाम है रखना, मतलब आप किसी शख्स का नाम अगर बाब हो, मैं इसलिए नहीं कहता किसी शख्स का अपना उसमें कोई दखल नहीं होता नाम रखने में, जाहिर उसके माँ बाप उसके नाम रखते हैं, इसीलिए ये माँ बाप का ये नजरत उमर रजी अल्लाह ने फरमाया कि ये माँ बाप बच्चे का हक है कि माँ बाप उसका अच्छा नाम रखे। तो अरबाब जो है बहुत सारे रब, अब किसी शख्स का नाम हो अरबाब, देखे तो मानी के एतबार से कितना गलत मानी है ये, बहुत सारे रब, अब एक शख्स का नाम जो है बहुत सारे रब, तो अच्छा दूसरा एक और है हमारे यहाँ, एक ट्रेंड है हमारे यहाँ, और कुछ मतलब आप कह लें कि इलाकों में, कुछ जो है कम्युनिटीज के अंदर कह लें, कि ये ज्यादा, कि जितना ज्यादा जो है नाम वो होगा यूनिक होगा, तो वो उतना ज्यादा अच्छा लगेगा और रखेंगे, और मानी की बिल्कुल परवाह नहीं करेगा। और मैं इस पर मैं हमेशा गौर करता हूँ, नाम सामने आता है तो फौरी तौर पर ख्याल जो मानी की तरफ चला जाता है कि कितने गलत मानी जो है वो नाम दे दिए जाते हैं, और इस बात का कतन जो है परवाह नहीं की जाती। और बाज तो लोग जो है इस बात की वो करते हैं आर्ग्यूमेंट, देखें देखें जी हमारा नाम कुरान मजीद में है, ये भाई कुरान मजीद में तो बहुत कुछ लिखा हुआ, कुरान मजीद में तो ऐसे नाम भी हैं जिनको हम जबान पे नाम लाना जो है हमारे कल्चर में कहते हैं कि ये नाम जबान पे नहीं लाना चाहिए। तो कुरान मजीद में होने का ये मतलब नहीं है कि इसके मानी भी अच्छे हैं, मतलब तो हम नाम हमेशा हम नामों के ऊपर, आपको पता है हम एक खसूसी तौर पे एक अलग जमीन में भी कर चुके हैं तो वो जहन में रहना चाहिए। लेकिन ऐसे जिक्र आ गया है कि ये दोनों लफ्ज जो है उर्दू में इस्तेमाल होते हैं, मुतफर्रिक के मानी अलग अलग कई जो है, मिसलेनियस जो है जिसके लिए उर्दू में आप इंग्लिश में कह सकते हैं। क्या बहुत सारे मुतफर्रिक रब खैरुन बेहतर हैं, ज्यादा बेहतर हैं, अम या फिर अल्लाह, या फिर अल्लाह एक अल्लाह जो एक अल्लाह है जो अलवाहिदुल कहार जो वाहिद है कहार है, कहार जो ये अल्लाह ताला का जो है कहरुन से सिफाती नाम है अल्लाह ताला का, जिसका मानी है बहुत जबरदस्त नहायत गालिब, और जो अपने काम को जब करना चाहे तो उस पे कोई उसको रोक ना सके, कोई गालिब है हर चीज के ऊपर, वो है कहार है वो मुबालगे का सीगा है कहार। मा ताबुदूना यानी वो एक है जो पूरी तरह जो गालिब है, मा ताबुदूना नहीं तुम बंदगी करो या नहीं तुम बंदगी करते, मिन दून ही उसको छोड़कर के अलावा किसी की बंदगी ना करो, इल्ला तुम करते यानी बताइए, चूंकि हजरत ये जहन में रहे कि ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का फरमान चल रहा है, कॉल चल रहा है अपने साथियों को, जेल के साथियों को, उनसे कह रहे हैं, उनको ताबीर बताने से पहले उनको बता रहे हैं कि देखो आए मेरे जेल के साथियों, बहुत सारे रब बेहतर हैं, ये एक रब बेहतर है जो वाहिद है जो कहार है, और नहीं उन फरमाया कि नहीं तुम बंदगी करते उसके अलावा, ये जिनकी भी तुम बंदगी करते हो ये नहीं उनका, इल्ला अस्मा, मगर वो बस कुछ नाम है, अस्मा नाम अस्मा जो उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, समय तुमूहा ये भी समय भी जो है समय समा जो समी जो है ये भी उसी अस्मा से है, लफ समा से समा जो समी तस्मियत नाम रखने के मानों में आता है, तस्मिया हजरत अल्लाह ताला का जो नाम है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कहना ये जो है तस्मिया कहलाता है। अंतुम तुम लोगों ने नाम रखे हुए हैं, हा इनके यानी इन इन माबूदों के तुमने नाम रखे हुए हैं, अंतुम तुमने आबाओकुम और तुम्हारे आबाओ अजदाद ने कुछ नाम रख लिए हैं, ये फलां है ये फलां है ये गौस है ये कुतुब है ये वली है ये दाता है ये हुबल है ये लात है ये मनात है, ये सारे तुमने नाम रखे हुए हैं। मा अनज़ल अल्लाह मा नहीं नाजिल किया अल्लाह ने, हजरत हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला ने कोई नाजिल चीज नहीं की, बेहा जो है इसकी बेहा यानी इस चीज की, ये जो तुमने नाम रख दिए हैं इस चीज की, हाँ इस चीज की कोई मिन सुल्तान कोई सनद कोई हुज्जत अल्लाह ताला ने नाजिल नहीं फरमाई। सुल्तान जो है सनद के मानों में भी आता है, हुज्जत के मानों में भी आता है, कुव्वत इक्तदार सल्तनत के मानों में भी आता है, लेकिन यहाँ पे इस सनद और हुज्जत के मानों में है। इनिल हुक्म इल्ला लिल्ला, जबरदस्त कुरान का है ये जुमला है, इनिल इन जो है ये नहीं के मानों में आता है अगर इल्ला के साथ आए तो, वैसे तो इन अगर के मानों में आता है शर्त के लिए, इन अगर के मानी शर्तिया होता है, लेकिन अगर ये इल्ला के साथ आ जाए तो फिर ये नहीं के मानी जाता है, नाफिया नफी के, इन नहीं है अल हुक्म हुक्म यानी हुक्म नहीं है हुक्म देने की ताकत और कुव्वत और हक, इल्ला मगर लिल्ला अल्लाह के लिए, ये अल्लाह का हक है कि वो हुक्म दे वो मना करे वो हक वो हलाल मुकरर करे हराम मुकरर करे वो शरीयत के अहकाम उतार, ये अल्लाह का हक है ये बात, और इंसानों को मजमूई तौर पर इसी के अंदर जो है प्रॉब्लम होता है जो होता चला है कि इस बात को जो है दे फेल टू रिकॉग्नाइज और एक्नॉलेज के ये हुक्म जो है ये फैसले का अख्तियार जो है ये अल्लाह का है, हुक्म का अख्तियार अल्लाह का है, हुकूमत का अख्तियार, ये जो हुक्म लफ्ज है ये हिकमत भी है ये हुक्म भी है ये हुकूमत भी है ये हकम भी है फैसले भी है, ये सारे मानों के अंदर जो लफ्ज जो है एक ही मादा है इसका, और हुकूमत भी इसमें शामिल है और जो है इसमें हिकमत भी शामिल है और इसमें हुक्म भी शामिल है, यानी हुक्म का अख्तियार नहीं है मगर अल्लाह को فیصلے اور حکومت کا اختیار نہیں مگر اللہ، ہمارا اس نے حکم دیا ہے، اللہ اللہ جو ہے ان لا ہے، ان کے لا نہیں، تعبدو تم عبادت کرو، اس نے حکم دیا ہے کہ تم نہیں عبادت کرو، بندگی نہ کرو، الا مگر ایا ہو، صرف اس کی. اچھا یہ جو لفظ ہے ایا جو ہے اس کو جان لے، ایا لفظ کے اپنے کوئی معنی نہیں ہوتے، یہ کسی چیز کے ساتھ آ کے پھر جو ہے یہ لمیٹیشن لمٹ جو ہے پیدا کرتا ہے، یہ حصر جس کو کہتے ہیں، محدودیت، یعنی مگر صرف اسی کی جو ہے. ایاہو آگے اس کے ساتھ کا بھی لگ سکتا ہے، ایا کا جیسے آتا ہے، ایاہو بھی لگ سکتا ہے، ایا ایا یا بھی لگتا ہے، ٹھیک ہے. تو مختلف ایا یا فرہبون آپ کو وہ بھی ہے، تو سارے یہ ایا کے اپنے الگ معنی نہیں ہوتے، لیکن یہ کچھ جو ہے محدودیت کے مفہوم پیدا کر، جیسے ایاہو مگر صرف اسی کی، اونلی ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ ہم پڑھتے ایا کا نعبدو، اس میں بھی ہے کہ صرف اور صرف تیری عبادت کر، بالکل صرف، اس میں محدود پیدا کر. ذالک یہ ہے الدین القیم، قیم الدین القیم جو ہے سیدھا، قیم بالکل جو اقامت، جو اس کی اقامت کر دی گئی ہے، سیدھا دین ہے جو ٹھیک ٹھاک جو ہے، اپ رائٹ جو ہے جس کو وہ کہتے ہیں درست قائم رہنے والا، یہ ہے سیدھا دین، یہ ہے جو اللہ تعالیٰ اس کو فرمان. ولیکن اکثر الناس، اور وہی بلا دوبارہ دہرایا جا رہا ہے یہ پھر، اور یہ تین چار پانچ مرتبہ دہرایا گیا، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لا یشکرون، یہاں پہ پچھلی میں آیت میں آیا تھا لا یشکرون، اور یہاں پہ لا یعلمون، لوگوں کی اکثریت جو ہے علم نہیں رکھتی ہے. ساتھ اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں.
اپنے بزرگوں ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا طریقہ اختیار کیا ہے، ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو شریک ٹھہرائیں. در حقیقت یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور تمام انسانوں پر کہ اس نے اپنے سوا کسی کا بندہ ہمیں نہیں بنایا، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. اے زندان کے ساتھیوں، تم خود ہی سوچو کہ بہت سے متفرق رب بہتر ہیں یا وہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے، اس کو چھوڑ کر تم جن کی بندگی کر رہے ہو وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ بس چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آباؤ اجداد نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی. فرما روائی کا اقتدار اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہے، اس کا حکم ہے کہ خود اس کے سوا تم کسی کی بندگی نہ کرو، یہی ٹھیٹ سیدھا طریقے زندگی ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں.
یہ بہت عظیم پیسج ہے جو ہے قرآن مجید کا، یہ جگہ جو حضرت یعقوب، حضرت یوسف علیہ السلام کا جو ہے، جو کہہ لیں کہ ان کی جو تقریر ہے، تو اس کے وقت تھوڑی دیر میں آگے اس پہ مزید بات کرتے ہیں. لیکن پہلی جو بات جو یہاں پہ بہت ساری باتیں ہیں، اکثر یہ تین آیات اکٹھی ہیں، تو جو ہے سمجھ لے کہ پہلی بات جو انہوں نے کی ہے وہ موروثی اور شعوری عقائد کا جو ہے فرق ہے. موروثی کیا عقائد ہوتے ہیں؟ موروثی عقائد وہ ہوتے ہیں جو ہمیں بچپن سے ہمیں ملے ہیں، جو مطلب ہے جیسے ہم نے بالکل چھوٹے سا ماں باپ نے جو چیزیں پڑھائی ہیں بتائی ہیں وہ موروثی ہیں. شعوری کیا ہے؟ کہ ہم نے اپنی زندگی کے میں جب شعور اور جو ہے بلوغت کی زندگی اور شعور کی زندگی ہے، اس وقت ہم نے جو سوچا ہے، غور کیا ہے، پھر وہ جو چیزیں آئی ہیں وہ شعوری جو ہمارے عقائد ہیں وہ والے. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی ملت توحید کی تاریخ، اس کی اہمیت اور عظمت بیان کی کہ یہ جس راستے کے اوپر میں ہوں یہ وہی راستہ ہے جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اسحاق علیہ السلام نے، یعقوب علیہ السلام نے اختیار فرمایا، اور یہ میرے آبا و اجداد تھے، وہ پھر یہاں پہ یہ انہیں بتا رہے ہیں. اور اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے یہ جو دین حنیف ہے، ظاہر اب یہ اسلام کا لفظ تو ہم ناؤن کے طور پہ ابھی ہم نے اس کو استعمال کیا، لیکن اس سے پہلے تو تمام انبیاء علیہ السلام کو جو ہم کہتے ہیں کہ دین اسلام تھا، تو وہ حقیقت دین حنیف ہی تھا، یہ ملت توحید تھی. اس کی فطری اور عقلی عظمت کو جو واضح کی ہے، یعنی فطری طور پہ تمام انسانوں کا مذہب جو ہے وہ توحید ہے، اور عقلی طور پہ بھی اس کو جو ہے وہ بتایا، انہوں نے بتایا کہ یہ بات بالکل روز روشن کی طرح واضح ہے کہ خالق ہے جس نے یہ دنیا بنائی، اس کو ہم زندگی، اس نے ہمیں زندگی بخشی ہے، ہمیں رزق دیتا ہے، ہمیں موت اور ہماری موت اور ہماری زندگی اس کے اختیار میں ہے، اور اس بات کی کوئی ذرا سا برابر بھی شہادت نہیں ہے، نہ ہماری عقل میں، نہ ہماری فطرت میں، نہ آفاق میں، نہ انفس میں، کہ کوئی اور بھی اس کے ان کاموں کے اندر شریک ہے، کوئی اور بھی موت دیتا ہے، کوئی اور بھی زندگی دیتا ہے، کوئی اور بھی رزق دیتا ہے. تو یہ ساری چیزیں صرف اسی کے ہیں. اور تو پھر ہمیں یہ کس طرح حق پہنچتا ہے؟ जब जो है वो मालिक वो है, खालिक वो है, राजिक वो है, तो फिर हम जो है किसी और को जो है उसकी खुदाई के अंदर जो है शरीक कर बना दें। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने शूरी अकीदे का जिक्र किया है कि जिन लोगों के दरमियान जो है वो जिंदगी गुजार रहे हैं वो अल्लाह उसके किसी नबी और वही वगैरह के तफ़ावुज़ात से बिल्कुल नाबलद है, ये लोग जिनको मुखातिब कर रहे थे कैदियों को और जिस मुआशरे के अंदर वो रहे थे, तो उन्होंने कहा कि देखो मुझे देखो कि मैंने इस माहौल से कोई असर कबूल नहीं किया, इर्द गिर्द के नजरियात और अकायद जो है नहीं अपनाए, मैं अपने पूरे शऊर के साथ अपने आबाओ अजदाद के नजरियात को मानते हुए उनकी पैरवी करूँ। मैं इसलिए नहीं उनकी पैरवी कर रहा कि वो मेरे आबाओ अजदाद हैं, बल्कि मैं इसलिए उनकी पैरवी कर रहा हूँ कि मेरे नजदीक यही माकूल और अकल सलीम के करीब तर है, यही रास्ता जो है। अल्लाह ताला ने अपनी तौहीद की मार्फत के अनगिन दलायल जा बजा जो है अनफुस के अंदर और कायनात के अंदर और जो है आफाक के अंदर और इंसान में इर्द गिर्द हर तरफ जो है वो रख दी है, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया कि अक्सर लोग इन पर गौर नहीं करते, और जब गौर नहीं करते तो फिर उसका भी शुक्र नहीं बजा लाते। तो यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि क्या बाप दादा की पैरवी मुतलकन गुमराही है? नहीं, जवाब है कि लाजमी नहीं है। अगर बाप दादा हक पर हूं और कुरान सुन्नत पर आमिल हूं तो उनकी पैरवी मतलूब है और महमूद है, अच्छी बात है। ये दरहकीकत उनकी पैरवी नहीं है बल्कि ये हक की पैरवी है। ये वाली जो पैरवी होती है ये अंधी तकलीद के जुमरे में नहीं आती। लेकिन अगर बाप दादा का कोई अमल ऐसा है जो दीन से और शरीयत से जो टकराता है तो उसकी पैरवी हम पे लाजिम नहीं है। फिर दावत तौहीद का जिक्र किया आपने, जो फरमाया उसके ये तम जो है ये तमहीद आपने पहले बांधी, जिसमें आपने नहायत ही मुख्तसर वाज और फैसलाकुन कलमात के अंदर जो है दीन इस्लाम के बिल्कुल कुछ निशानात वाजे कर दिए और फिर जो है दीन के पूरे अनासिर तरकीबी जो है बयान कर दिए आपने। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इन निशानात और इन आसिर की बराह रास्त दावत नहीं दे रहे, देख लीजिए आप, बल्कि उनको मौजूए गौर व फिक्र उनके सामने रख रहे हैं, मैटर ऑफ प्रोफाउंड कंटम्पलेशन और रिफ्लेक्शन की। देखो ये वो बात है, इसके ऊपर थोड़ा सा गौर करो, क्या बहुत सारे रब बेहतर हैं या एक रब बेहतर है जिसने मालिक है खालिक है जो रब है इस चीजों का? ठीक है, तो एक जो है एक थॉट प्रोवोकिंग जो है वो सब्सटेंस उनके सामने उन्होंने जो है ना वो रखा है, और देखें कि ये इससे दावत की हिकमत का एक नुक्ता सामने आता है कि दावत में तदरीज होनी चाहिए। अगर आप किसी शख्स को, चाहे वो अगर गैर मुस्लिम है या फिर अगर कोई मुसलमान है जो प्रैक्टिसिंग जो है वो नहीं है, मुसलमान नहीं है, तो क्या करेंगे कि आप उसको राइट वे, आप उसको दीन के और आप अपने फिक्र के बड़े मुश्किल पेचीदा किस्म के मसायल बताना शुरू कर दें तो वहीं से भाग जाए कि भाई मैं नहीं, मैं इस दीन की तरफ नहीं आता, ये बड़ा मुश्किल दीन है। तो दीन में तदरीज जो है ग्रेजुअलिज्म जो है वो बहुत जरूरी है, लोगों को तदरीजन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो लोगों को सबसे आसान चीजें पहले जो है लोगों को बताई जाए दीन के अंदर, और लोगों को बुनियादें बताई जाए दीन के अंदर कि ये बुनियादें हैं। लोगों को पहले फौरन ही कहेंगे आपने 17 रकातें जो है ईशा की पढ़नी है तो लोग भाई मैं ये नमाज नहीं पढ़ता इस तरह। तो ये जो है ये खुद ब खुद दीन की हिकमत के अंदर ये चीजें सारे। फिर वो ये सवाल हो गया कि साथी हो तुम खुद ही सोचो, तो फर्क रब बेहतर है, ये एक रब बेहतर है जो गालिब है और वाहिद है और कहार है। तो ये एक सवाल है, इसको इस सवाल को इस्तफहाम इनकारी कहते हैं, रेटोरिकल क्वेश्चन है कि जिसके अंदर खुद ही उस सवाल के अंदर जो इनकार है वो पोशीदा होता है, यानी जिस चीज का सवाल किया जा रहा है उसका इनकार खुद उसके अंदर पोशीदा होता है। अरबी में इस इस्तफहाम को, इस सवाल को उर्दू के अंदर भी इस्तफहाम इनकारी कहते हैं। तो ये एक ऐसा सवाल पूछा है आपने जो बराह रास्त इंसानी फितरत की गहराइयों में जाके लगता है, थक जाके बिल्कुल सही जगह पे लगता है कि इंसान सोचेगा यार वाकई ये मैं सोचूं इसके ऊपर जो मुझे कह रहा है, ये बात सही तो नहीं है, अगर ये बात लगती तो है दिल को ये बात तो फिर मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। ये वो बात है कि नहीं, ये फितरत इंसानी को खूब झंझोड़ती है ये बात, ये वाला सवाल। तो इंसानी फितरत का तकाजा है, वो कह रहे कि ला एक होना चाहिए, अगर तुम महसूस करते हो कि फितरत का तकाजा है तो यही है कि वो एक इला हो, तो फिर तुम बहुत सारे खुदाओं की कायल क्यों हो, तुम बहुत सारे खुदाओं के आगे क्यों झुकते हो, उनसे क्यों जो है वो दुआएं मांगते हो। इंसानी फितरत और आलम की फितरत का इलाज जो है एक रब है, तो उसका लाजमी तकाजा है कि उसकी जिंदगी में रब ही का हुक्म चले और शरीयत भी उसी का हो और हक और जो है वो हलाल और जो है हराम उसकी जितनी भी तख्सीस है वो भी उसी की तरफ से आनी चाहिए, ये भी उसी का हक है। और ये मुमकिन नहीं है कि लोगों को मालूम हो जाए कि एक अल्लाह ही जो है वाहिद, वही खालिक है और मालिक है और कहार और गालिब है, और फिर भी वो गैर अल्लाह की बंदगी करें और इताअत करें, और इसके सिवा फिर कोई उनका कोई कैसे हाकिम कैसे हो सकता है। रब ही इलाह है और वही हाकिम होता है, इस पूरी कायनात के उमूर को वही चलाता है। ये मुमकिन नहीं है कि एक जात कायनात को न चला सकती हो, लोगों की मदद न कर सकती हो, लोगों को प्रोविजन न दे सकती हो, और वो रब नास जो है वो कहलाए, तो ये अकलन मुमकिन नहीं है। फिर आपने दावत तौहीद को जो है वो ये जारी रखा इस तरह और आगे बढ़ाया, और फिर आगे चलकर अब अगले कदम के अंदर आपने निस्तन ज्यादा खुलकर जाहिलियत के अफकार और उनके वहम और तौम परस्ती पर जो है वो तनकीद की। आपने फरमाया कि जो तुमने जो बहुत सारे रब बना रखे हैं अपने माशरे में, अब नाम लिया होगा जो जो वहां पे उस वक्त होंगे, जिस तरीके हमने भी बहुत सारे बना रखे हैं, इस तरह जो है रब नहीं बना रखे लेकिन जाहिर हम मांगते भी हैं अगर जो उनसे, तो ये बताया कि देखो ये इंसानों में से भी है, गैर जिनों में से भी है, और फरिश्तों को भी तुम लोगों ने गैर इंसानों में से भी है, तो ये किसी मानी के अंदर अब नहीं है। ये तो नाम तो तुम्हारे बाप दादा ने घर रखे हैं, अल्लाह ताला ने इनके रब होने की कोई दलील नाजिल नहीं फरमाई, कोई दलील नहीं उतारी। जो रब होने का जो हक है, यानी हक रबूबियत है, और जो रब होने का मकाम है, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को हासिल है, और वही उसके सजावार है। हकीकी इला वही है और हकीकी रब जो है भी वही है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फिर उनके अकायद पर आखिरी जरब लगाई। अब देखें किस तरह ग्रेजुअली हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उनको दावत दी, और फिर आगे बढ़कर जो है किस तरीके से तदरीजन बड़े एक फ्लो के साथ जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। आपने फिर आखिरी जरब लगाते फरमाया कि देखो ये असल सल्तनत का हकदार सजावार कौन है, कौन इस बात का मुस्तहिक है कि उसी की इताअत की जाए, उसी की बंदगी की जाए, और जो है उसके अलावा किसी की बात ना मानी जाए, किसी का कानून ना हो, किसी की बंदगी ना हो, तो ये बात आपने फरमाई। तो यहाँ पे कुरान मजीद का बहुत अहम हुक्म जो है सामने आता है, अगरचे इसका तذکرہ दूसरी जगहों पे भी है, लेकिन देखें ये मकाम भी देखें, ये एक नबी और अल्लाह के बरगुजीदा पैगंबर की जबान से ये बात कही गई कि हुक्म और हकमियत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए। इसको बहुत इस मकाम को अच्छी तरह जान लेना चाहिए, इनल हुक्म इल्ला लिल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई हकीकी हाकिम नहीं है, अल्लाह के सिवा और शख्स अगर अल्लाह के इस हक में यानी उसकी दावेदारी करेगा, बराबरी करेगा, और जो है कहेगा कि मेरा हुक्म चलना चाहिए, मैं हाकिम हकीकी हूँ, मैं हाकिम मुतलक हूँ, मैं मुक्तदर आला हूँ, तो फिर क्या होगा, उसका मुकाबला जो है और उसका मुकदमा फिर अल्लाह ताला के साथ है, वो अल्लाह ताला के मुकाबला खड़ा हुआ है। अल्लाह के सिवा हकमियत ही का दावा करने वाला, चाहे ये कोई शख्स हो, जान ले अच्छी तरह इस बात को, या फिर कोई तबका हो, कोई जमात हो, कोई उम्मत हो, सब के सब लोग हों, कोई इदारा हो, कोई पार्लियामेंट हो, जो शख्स भी अल्लाह ताला के मुकाबले में अपनी हकमियत की और सॉवरेनिटी का मुदई होगा, तो उसका मामला जो अल्लाह ताला के मुकाबले के अंदर है, वो अल्लाह ताला के मुकाबले में आके खड़ा हो गया है। उसने गोया अपने, हमारी जो शरीयत की जबान में कहेंगे, उसने फिर गोया ये कुफर का इरतकाब किया, और कानून बनाने और उसके मुताबिक हुक्म चलाने का अख्तियार सिर्फ अल्लाह का है। अल्लाह के जो कानून है और शरीयत है, शरीयत का जो कानून है वही गालिब कानून है, और वही अल्लाह ने दिया है कि तुम इसे नाफिज करो, और हुक्म इलाही के मुकाबले में फिर किसी और का हुक्म नहीं, जहां पे अल्लाह का हुक्म आ गया वहां पे किसी और का हुक्म नहीं। हाँ ये फर्क करना चाहिए, आगे हम आप इस पर बात करेंगे कि अगर जो दुनिया के मामलात हैं, दूसरे मामलात हैं, इंतजामी मामलात हैं मसलन, उनके अंदर कोई हर्ज नहीं है, आप अपने कानून बनाओ, लेकिन जहां पे जो शरीयत का हुक्म होगा, जो चीज अल्लाह ताला ने मुकर्रर फरमा दी है, जो हलाल बना कर दिया है, जो हराम ठहरा दिया है, वो कोई शख्स उसको जो बदल नहीं सकता। हत्ता कि अल्लाह ताला ने रसूलों को भी इसकी अथॉरिटी नहीं दी है कि हक हलाल और हराम को जो है वो बदल सके और अल्लाह ताला की शरीयत को बदल सके। यानी इन हुक्म इल्ला लिल्लाह का जो जिसमें कह रहा हूँ कि कुरान का अजीम मकाम है, इसलिए जान इला होना, रब होना, हाकिम होना, ये सब अल्लाह ही को सजावार है। उसके मुकाबले में जो उनका मुदई होगा, फिर वो अल्लाह ताला जो है वो अल्लाह ताला से उसका हक छीनने की कोशिश करेगा। वो चाहे जो कहे वो फिरौन की तरह वो कहे कि अना रब्बुकुम अल आला, ये नीचा इस तरीके से कि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब आला, या फिर किसी और तरीके से कहे, कोई बात कहे, मा अलिमतु लकुम मिन इलाहिन गैरी, मैं तो तुम्हारे लिए नहीं जानता कोई चीज, कोई इला अपने अलावा, यानी मैं तुम्हारा ही, मैं ही तुम्हारा इला हूं, मैं ही तुम्हारा बादशाह हूं, मैं तुम्हारा मालिक हूं, मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूं। या फिर वो ये समझे कि इस्लामी जो निजाम शरीयत है, जो अल्लाह ताला ने उतारा है निजाम, ये हुक्मरानी से इसको खारिज कर दे, ये जो हुक्मरानी के काबिल नहीं है। या ये फैसला कर दे कि हुक्मरानी और कानूनसाजी का जो मर्जा है, जो 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 सोर्स है, जो मंबा है, वो अल्लाह ताला के सिवा कोई और है, और कहे कि हकमियत का सरचश्मा या फिर अवाम है या पार्लियामेंट है या कोई और है, तो ये सारी की सारी चीजें इनल हुक्म इल्ला लिल्ला के सख्त मुनाफी है। और ये काम कोई चाहे फर्द करे, कोई जमात करे, कोई इदारा करे, कोई इंसानों को मजमुआ करे, पार्लियमान
बिल्कुल
करे, वो अल्लाह के मुकाबले में ये बड़ा अजीम मकाम है इस लिहाज से। तो इस फिर एक और बात की मैं साथ थोड़ी वजाहत कर लूँ ताकि जो है बात वाजे हो जाए। इस्लामी निज़ाम में हुक्मरान की हाकमियत, यानी इस्लामी निज़ाम में तो खलीफा भी होते हैं, हुक्मरान भी होते हैं, बादशाह होते हैं, तो उनकी क्या अहमियत है? इस्लामी इज्तमाहियत के अंदर जहाँ मुसलमान रहते होंगे, ये इस्लामी निज़ाम में हाकिम का इंतखाब जो है मुसलमान उम्मत करती है, और इस्लाम उस हाकिम को हाकमियत का इख्तियार देता है, और ये इख्तियार इस्तेमाल करता है वो शरी हुदूद के अंदर, जो अल्लाह ताला ने हुदूद मुकर्रर की है, उनसे बाहर नहीं के जा सकता, अपनी तरफ से कोई हराम और हलाल मुकर्रर नहीं कर सकता,
नहीं
इस्लाम के
नहीं
निज़ाम को, इस्लाम के कानून को बदल नहीं सकता। इस्लामी निज़ाम में कोई शख्स जो है, चाहे वो पार्लिमानी हो, कानून साजी और हाकमियत का मंबा और मस्दर नहीं होता, ये जान लेना चाहिए। दुनिया को जो अक्सर गलतफहमी हुई है लोगों को, और बड़े बड़े जो है वो जो फिक्री दिमाग है जिनको भी इस में हुई है, वो यही है कि हक के हाकमियत का जो इस्तेमाल है और हाकमियत के मंबा और मस्दर में फर्क न करना, ये सबसे बड़ी जो है गलतफहमी होती है। कि जो हक के हाकमियत है वो अल्लाह का है, और हाकमियत का जो मंबा और मस्दर है वो पार्लिमान नहीं है, वो लोग नहीं है, वो अवाम नहीं है, वो अल्लाह ताला है। ये जो चीज ये जान लेनी चाहिए, और फिर इसी को हकमियत इलाका कहा गया है, ये अल्लाह ताला की हकमियत है, उसी को इसका हक है, वही मुक्तदरे आला है, वही खुद आज खुद हुक्म देने का हक उसी को है, किसी और को नहीं है, मरना करने का मजाज भी कोई और नहीं है उसके अलावा, मुस्तकिल बिजात शारे शरीयत देने वाला और कानून साज कानून देने वाला भी वही है, मुस्तकिल बिजात कह रहे हैं, यानी वही उसी का कानून चलेगा, आगे इंसान अपने दायरे महदूद दायरे के अंदर थोड़ी सी कानून साजी और वो कर सकता है। इंसान इंसान जमीन में खुद मुख्तार और मालिक और हाकिम नहीं है, बल्कि वो असल मालिक और हाकिम का खलीफा है, नायब है, मुसलमानों का नुमाइंदा है वो। तो जो हाकिम या पार्लियमान को जो हुक्म और कानून साजी का अख्तियार जो है वो शरीयत इस्लामी के मुकर्रर करदा हदूद के अंदर होगा, उनसे बाहर नहीं होगा। इन हदूद से बाहर अगर कोई कानून साजी करेगा तो ये फिर हकमियत जमहूर की नफी है। ये वो बात है जो 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 है यहाँ पे बताई गई है। इबादत तो बंदगी भी फरमाया कि उसी की है, यूसुफ सलाम ने मजीद आखिरी बात फरमाई कि देखो ये हुक्म अल्लाह का है, इबादत और बंदगी और इताअत भी उसी की होनी चाहिए, ये ठीक और सीधा साधा दीन दीने कय्यम है। आपने पूरी वजाहत फरमा दी दीने कय्यम की, यानी इबादत जो है इबादत का महदूद तस्वर नहीं है, रिचुअल सजूद और कयाम और रुकू नहीं है, पूरी जिंदगी को दायरे में ले आना है, इताअत के दायरे में ले आना है, और अल्लाह ताला की जो है वो बंदगी के दायरे में ले आना है, ये इबादत है। इस तस्वर दीन के अलावा फरमाया कि कोई और तस्वर दीन ठीक नहीं, ये दीन कय्यम है, ये सही अपराइट दीन है, और ना अल्लाह ताला कोई किसी कोई और दीन अगर लेके कोई आएगा तो काबिले कबूल होगा। ये हम सूरह अलमादा के अंदर भी पढ़ रहे हैं कि अगर कोई और दीन इसके अलावा लेके आएगा तो अल्लाह ताला को कबूल नहीं होगा, वो फिर अल्लाह के मुकाबले में किसी और दीन को उसने ला खड़ा किया है, फिर वो जाने, वो अल्लाह ताला जाने, वो दो अल्लाह ताला उससे निपट लेगा। आप अलैहिस्सलाम ने दीन हकीकत दीन को खोल कर जहां बयान कर दिया, आप देख सकते हैं कि कितनी अहम तरीन तकरीर है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कैदियों से जो खिताब है, हजरत यूसुफ सलाम ने देखे तो तीन चार बातें, बिल्कुल अब बहुत सारी बातें हुई हैं लिहाजा आप हो सकता है भूल जाए, चार बातें जो है वो याद रख ले, ये आपने फरमाई है। आपने फरमाया फैसला कुन अंदाज के अंदर मुख्तसर से कलमात के अंदर शिर्क की जड़ काट के रख दी, दीन इस्लाम के हकीकी निशानात मुकर्रर फरमा दिए कि दीन इस्लाम क्या है, इस्लामी नजरिए हयात की तमाम बुनियादी अनासर बयान कर दिया आपने, और दो फिक्रों के अंदर जाहिलियत और जाहिली फिक्र की जड़ काट के आपने रख दी। ये वो जो चीजें हैं बातें आपने देखें, कितना वक्त हुआ होगा आपने मुख्तसर सी तकरीर फरमाई उनको जो है अपने वो बताने से पहले, ताबीर बताने से पहले। इस हवाले से ये तौहीद की जो वजाहत की है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस तकरीर के अंदर, ये कुरान मजीद की इस मौजू के ऊपर सबसे बेहतरीन तकरीर है, मुफसरीन इसके बारे में लिखा है, आप अंदाजा कर सकते हैं। इसीलिए मैंने थोड़ा सा वक्त लिया है और मैंने फिर जो है इस पर थोड़ा सा जो है वो इसकी वजाहत करने की कोशिश की है, और इस ये वो मकाम है, इस मकाम को अच्छी तरीके से जो है जान लें। आगे फरमाया या साहब सिजने, वही लफ्ज दोबारा आ गया है, मेरे कैद खाने के दोनों साथियों, अम्मा, ये जो अम्मा लफ्ज होता है ये जहां तक ताल्लुक है फलां चीज का, ये इस मानों में आता है, एज फार एज दैट थिंग इज कंसर्न और फलां थिंग इज कंसर्न उसके मानों में आता है। अम्मा जहां तक रहा, या हम आम उर्दू जुबान में फिर कहते हैं कि रहा वो तो, अब अम्मा आहदो कुमा, आहदो एक, कुमा तुम दोनों में से, अब रहा तुम दोनों में से एक। अब आप देखिए, दो बंदों को आप खिताब कर रहे हैं, दो बंदे आपके सामने बैठे हैं, उनको आप जो है वो बता रहे हैं, अब ये नहीं कह रहे तुम या तुम, आपने फरमाया कि रहा तुम दोनों में से, ये भी इसमें तबलीग की हिकमत है इसके अंदर। आप देखें, आपने दो बंदों को खिताब कर रहे हैं, दोनों ने अपने अपने जो है ख्वाब पूछे हैं, तो आप इस बात पर गौर कीजिए कि ये कैसा तर्ज तखातुब है, आप किस तरह फरमा रहे हैं कि अब तुम दोनों में से जहां तक उस ख्वाब का तल्लुक है जिसने ये ख्वाब देखा, तो आप ही नहीं ऐसे ये बता रहे हैं, अब ये नहीं कह रहे कि ए भाई जो तुमने ये ख्वाब देखा, ये नहीं, उसको एक फर्द को मुखातिब, शख्स को मुखातिब नहीं किया, शख्सन खिताब नहीं किया, तुम दोनों को इकट्ठा खिताब कर रहे हैं, तो फरमा रहे हैं कि तुम दोनों में से जिसने ये ख्वाब देखा उसकी ताबीर ये है, और जिसने ये ख्वाब देखा उसकी ताबीर ये है। अब फिर हम इसकी इंशाल्लाह इसकी हिकमत पे फिर बात करते हैं बाद में। तुम दोनों में से एक फयस्की रब्बहू खमरन, फयस्की तो पस तो यस की वो पिलाएगा, रब्बहू अपने रब को, अपने आका को, यहां पे रब जो है लुघवी मानों के अंदर है, लुघवी मान लुगत के मानों के अंदर है रब, जाहिर है जितने भी अल्लाह ताला के अल्लाह के नाम के सिवा रहमान और अल्लाह के नाम के सिवा जितने भी नाम है वो भी लुगत लुगत के से ही है, लुघवी नाम है वो इंसानों पे भी जो होते हैं, तो जाहिर है रब जो है कोई इंसान भी होता है, रबुल बैत भी हो सकता है, घर का सरबराह भी हो सकता है, आका भी हो सकता है, कोई हुकूमत का सरबराह, उसको भी कुरान ने रब जो है कहा है, लेकिन जाहिर है एक अल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल आलमीन है, और जाहिर ये रब जो है बहुत महदूद मानों के अंदर है, तो ये फर्क हो जाता है शरीयत के अंदर जाके। फयस की वो पिलाएगा अपने रब को, अपने आका को, खमरन शराब, तो वो पिलाएगा अपने आका को शराब। आपको पता है ना कि एक में उसने कहा था कि वो अपने जो है आका को शराब कशीद कर रहा है, वो उसने एक ख्वाब देखा था, ठीक है, और तो वो उसके बारे में फरमाया कि वो शराब पिलाएगा। वो अमल आखर, और रहा दूसरा, जहां तक ताल्लुक है दूसरे का आखर, दूसरे जा, ये आखिर नहीं है, आखिर अगर होता तो आखिरी होता, लास्ट आखर है, दी अदर, जहां तक दूसरे का बात कर रहा रहा दूसरा, फयुस्लब, तो वो सलेब पे लटकाया जाएगा, वो फांसी दिया जाएगा, ये वो लफ्ज है सलेब, सलबा यस्लुबो सलबन, ये सलबन जो है दोनों मतलब ये जो मस्तर है ये दोनों फॉर्म में लिखा जाता है, पेश की सूरत में, दो पेश की सूरत में भी लिखा जाता है, दो जबर की सूरत में भी, सलबन या सलबन एक ही बात होती है, सूली देना, और सलबा जो सलेब तस्लीबन वो भी सूली देना होता है, तो वो भी ठीक है, दोनों फर्स्ट फॉर्म और सेकेंड फॉर्म के मानी में एक ही जैसे होते हैं, तो फांसी, तो वो जो है सलेब पर लटकाया जाएगा, फांसी दिया जाएगा, पताकुलो तो क्या फिर ताकोलो खाएंगे, अतरो परिंदे में रासी उसके सर से, और परिंदे फिर खाएंगे नोच नोच कर उसके सर से, या उसके गोश्त खाएंगे, या पुराने जमाने में जो ये शख्स था इसके बारे में मुफस्सिरीन ने लिखा है कि ये इसने जो है वो बादशाह को कुछ दुश्मनों के साथ मिलके जो है वो जहर देने की कोशिश की थी, पकड़ा गया, तो ये खुब्बास था, मखबस बनाने वाला, रोटी बनाने वाला, तो जाहिर फिर ये इस पे जो है डाल दिया गया था, मतलब पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन, तो जो है वो इन्वेस्टिगेट हुई, तो फिर उसका जो नतीजा आएगा, तो हजरत यूसुफ ने फरमाया कि फिर ये जो है इसको फांसी दे दी जाएगी, इसलिए ही फाउंड गिल्टी, खुद ही अल अम्र, फैसला हो चुका है, आपने फरमाया फैसला हो गया है, अल्लाजी वो जो फी है तस्तफ्तियाने, उसके बारे में फरमाया कि फैसला हो चुका है अल्लज़ी, उस चीज के बारे में, फी है जिसमें, तस्तफ्तियाने, तस्तफ्तियान, देखें ये तस्तफ्तियान जो है, यान तो दो कसी का हो गया, आगे है इस्तफ्ता, जो इस्तफ्ता है, हम पहले फतवा पूछना या कोई चीज पूछना, तलब करना, जवाब तलब करना, फतवा पूछना, ये वो ही है इस्तफ्ता, फतवा पूछना, जिसके बारे में हम दोनों पूछते हो, इस्तफ्ता यस्तफ्ती इस्तफ्तान, फतवा पूछना, दरजाफ्त करना, कोई बात पूछना, ये वही लफ्ज है, वो मुश्किल लफ्ज है कुरान का, लेकिन उर्दू में ये इस्तफ्ता जो है वो, या फतवा, वकाल अल्लजी, और कहा सलाम ने उस शख्स से, लल्लजी किस शख्स से, जन्ना अन्नहू, जिसके बारे में ख्याल किया उसने, यानी यूसुफ सलाम ने, नाजन, जो जो निजात पाएगा, ये जो है वो है पायल है, ये निजात पाने वाला, नाजन, जैसे कादिन जो होता है, कादी जो है फैसला देने वाला, मिन हुमा, दोनों में से जो निजात पाएगा, फिर वो क्या है, उसे कहा उज़्कुरनी इंदा रब्बिक, जिक्र करना नी मेरा, इंदा रब्बिक अपने आका के यहाँ, अपने रब के यहाँ, अपने आका के यहाँ मेरा जिक्र करना। अच्छा, रब यहाँ पे वही है जो है हाकिम है, कानूनी दस्तूरी निजाम का जो सरबराह है, जिसकी इताअत की जा रही है, उसके मानों के अंदर है, तो जाहिर है पूरे निजाम में उसकी बात चल रही है, तो रब है उसके लुघवी मानों के अंदर, उसे मेरा जिक्र करना कि मैं किस तरीके से एक बंदा यूसुफ जो है वो बेगुनाह है और वो जेल के अंदर पड़ा है, वो अनसा हो, पस अनसा जो है वो भुला देना, अनसा यूनसी, इंसान भुला देना, शैतान, तो शैतान ने भुला दिया, जिक्र रब्बहू, उस जिक्रा, जिक्रा तो जिक्र करना, रब्बहू अपने रब से, अपने आका से, तो अपने रब से जिक्र कर, शैतान ने उस शख्स को भुला दिया, फला बेसा, पस तो वो लबेसा रहना, इसी जगह पे जो है वो ठहरना, तो वो ठहरा रहा या रहा वो सिजने कैद के अंदर, बेदा सनीन जो है चंद साल या कई साल, बेदा जो है ये इस्तेमाल होता है चंद साल, यानी ये 3 से लेकर 10 तक, 3 से लेकर 9 तक के मानों में भी इस्तेमाल होता है, और यानी 10 से कम साल जो होते हैं, तो यूसुफ सलाम के बारे में कि आपने 8 से 9 साल, 9 साल जो जेल के अंदर जो है वो रहे, ये रिवायात आती हैं, तो ये जो है वो, तो इसका जो है सारी तरह,
ए जिंदान के साथियों, तुम्हारे ख्वाब की ताबीर ये है कि तुम में से एक तो अपने रब को शराब पिलाएगा और दूसरा तो इसे सूली पर चढ़ा दिया जाएगा और परिंदे इसका सर नोच नोच कर खाएंगे। फैसला हो गया उस बात का जो तुम पूछ रहे थे। फिर उनमें से जिसके मुतालिक ख्याल था कि वो रिहा हो जाएगा, इससे यूसुफ अलैहि इस्लाम ने कहा अपने रब से मेरा जिक्र करना, मगर शैतान ने इसे ऐसा गफलत में डाला कि वो अपने रब से इसका जिक्र करना भूल गया और यूसुफ अलैहि इस्लाम कई साल कैद खाने में पड़ा रहा।
जाकला। अब ये ख्वाबों की ताबीर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बताने लगे हैं, कैद खाने के साथियों ने तो सिंपली बात पूछी थी कि भाई हमें ख्वाबों की ताबीर बताओ, तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम देखें कि पैगम्बराना मिशन पे थे, मिशन के आमिल थे, अम्बिया अलैहिस्सलाम जो है जाहिर है उनके दिलो दिमाग पे सबसे ज्यादा जो चीज हावी रहती है वो दावत होती है, अल्लाह ताला के दीन की दावत और तौहीद की दावत होती है, जहां कभी भी जो मौका देखते हैं तो उसको पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो आपने भी इस मौके से फायदा उठाया, तो आपने ख्वाब की ताबीर बताने से पहले आपने तौहीद जो है उन तक पहुंचाई, तो आपने फरमाया उनसे कि तुम में से जिसने शराब निचोड़ने का जो है ख्वाब देखा है वो तो अपने मनसब पर बहाल हो जाएगा और अपने आका यानी बादशाह की खिदमत पे लग जाएगा, री इंस्टेट हो जाएगा, और जिसने ये ख्वाब देखा है कि वो सर पर रोटियां उठाई हुई है और परिंदे उसके सर पर रोटियां उचक उचक कर खा रहे हैं, उस शख्स को फांसी दी जाएगी और उसकी लाश कई दिनों तक लटकती रहेगी फांसी पे, जाहिर है जब बादशाह की पुराने जमाने में जब वो होते थे इस पे सख्त नाराज होते थे तो उसके साथ ये भी फिर करते थे, फांसी के साथ इसकी लाश को लटका दिया जाए जो है वो, तो ये फरमाया, और ये है तुम्हारे ख्वाबों की ताबीर, और फरमाया कि मैंने अपना वादा जो है फिर इसमें पूरा कर दिया, तो देखें कि हजरत यूसुफ सलाम ने अच्छे अंजाम पाने वाले और बुरे अंजाम तक पहुंचने वाले का शख्सन तयुनी फरमाया। अब देखिए इसमें एक चीज होती है कि जाहिर है आप एक शख्स को बहुत आप बताएं कि ये हिकमत की वो बात भी होती है कि, तो वो फिर जो है जाहिर है एक डिमोरलाइजेशन, ज्यादा डिमोरलाइजेशन उस शख्स के लिए बराह रास्त जो मौजूद होती है। किसी शख्स को आप देखें कि आजकल के जमाने के अंदर भी मेडिकल की जो जो आप देखें कि जो सेटअप्स होते हैं उनके अंदर, जब आप ब्रेक खबर करते हैं, कोई बुरी खबर ब्रेक करते हैं किसी की बीमारी के अंदर, तो फिर देखें वो काउंसलर्स होते हैं वहां पे, उसमें वो काउंसलर जो है वो खबर ब्रेक करते हैं, वो किस तरीके से बताते हैं, फिर वो काउंसलिंग करते हैं कि किस तरीके से इस खबर को बर्दाश्त करने का हिम्मत जो है पैदा की जाए, और इस तरीके से। तो ये उसके अंदर जो हिकमत शामिल है कि जो है बराह रास्त जो है वो ना किया, हालांकि आपके सामने सिर्फ दो शख्स बैठे हैं और दो जो है वो बताना कोई बात है कि तुमने ये ख्वाब देखा इसकी ये ताबीर है, तुमने ये ख्वाब देखा इसकी ताबीर है, लेकिन आपने जो है बिल्कुल ही जनरली अंदाज अख्तियार करके बताया। हजरत यूसुफ सलाम ने फिर, आप चूंकि एक नाकर्दा गुनाह के कैदी थे, तो आपने ख्वाबों की ताबीर बताने वाले को जो है जिस शख्स के बारे में आपने बताया कि तुम बहाल हो जाओगे, उससे कहा कि जब तुम अपने कभी अपने बादशाह के पास जाओ तो उससे मेरा जिक्र करना कि देखो इस मेरे मामले की, यूसुफ के मामले की तहकीक करे। तो इससे हमें पता चलता है कि किसी जायज मकसद के लिए जायज तदाबीर और वसायल का अख्तियार करना तवक्कल और अल्लाह ताला पे एतमाद के खिलाफ नहीं है। बहुत सारे लोग, अच्छा इसमें बहुत सारी खराफात जो है, चूंकि मैंने कहा पहले आपसे जिक्र किया था कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा जिस तरीके से लोगों ने इसको जो है लिखा है और जुल्म किया है इसके, हालांकि कुरान मजीद में जब ये मौजूद है, तो फिर हमें बहुत सारी खराफात देखने की जरूरत नहीं है। आप हैरान होंगे किताबें जो बाजार के अंदर मौजूद हैं वो पढ़ें तो कि किस कदर बईद है कुरान मजीद के वाक्य से और इसराइलियात से, और इसराइलियात से भी बढ़कर फिर आगे हमने उनका जो है वो जो है खूब मिर्च मसाला लगाया है लोगों ने, शायद किताब बेचने के लिए जो भी मकसद था। कि यहाँ पे लोगों ने फिर इस पे लिखा है कि देखिए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो है अब उन्होंने अल्लाह के अलावा किसी और पे तवक्कल की भरोसा किया और जो है वो कहा कि मेरा बादशाह से जिक्र करना, तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है वो तादीबन अल्लाह ताला ने उन पे तादीब फरमाई और तादीबन फिर वो 8 साल जो है मजीद जेल के अंदर जो है रहे। और हालांकि यहाँ पे साफ जाहिर हो रहा है कि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि उस शख्स को शैतान ने भुला दिया, यानी ये एक अच्छा काम था कि एक बेगुनाह इंसान अगर कैद से बाहर निकल आए और उसकी बेगुनाही जो है वो सामने नापाकबाज इंसान की बेगुनाही साबित हो जाए, तो ये एक मुआशरे में अच्छी बात है और इससे जो है इंसाफ का चाल चलन होगा और बोलबाला होगा। तो ये शैतान तो कभी नहीं चाहता कि इंसाफ का बोलबाला हो शैतान, तो उसने इसका तذکرہ भुलवा दिया और शैतान की तरफ अल्लाह ताला ने रेफर किया इसको कि शैतान ने भुला। अगर ये होता तो फिर अल्लाह ताला खुद फरमा देता कि हमने, ये जाहिर अल्लाह ताला की मशीयत जरूर थी ये कि यूसुफ अलैहिस्सलाम कुछ मजीद वक्त जेल के अंदर गुजारे, लेकिन अल्लाह ताला की मशीयत को तो कोई नहीं जानता, लेकिन ये बात तो कतई नहीं है कि अल्लाह ताला ने तादीबन जो है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मजीद जेल के अंदर जो भेज दिया, हालांकि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तो इससे पहले खुद जेल में जाने का जो है वो तذکرہ फरमाया था, दुआ मांगी थी कि मैं बजाय इसके कि मैं औरतों के मकर के अंदर और इस पड़ जाऊं और रास्ते राह रास्त से भटक जाऊं, मैं जेल को जाना ज्यादा पसंद करता हूं। तो ये सारी वो खराफात हैं जो हमारे जो है इन किस्सों के अंदर आ गई हैं। इसके बाद कुरान मजीद जो है बाकी की वो तफसीलात नहीं बताता कि इन कैदियों के साथ क्या हुआ, और यकीनन ये छोड़ देता है कि यकीनन ऐसा ही हुआ है जैसे हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, और वो शख्स जब मनसब पे बहाल हुआ तो शैतानों से वो बात भुला दी जो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कही थी कि मेरा जिक्र करना। अल्लाह ताला की हिकमत और मसलहत का तकाजा यही था अभी मजीद कुछ साल जेल में गुजारे और यूं ये बात जो है पूरी हो गई जो है कि अल्लाह ताला ने जो है उनको मजीद जेल के अंदर ये वक्त रहा, और यानी ये अल्लाह ताला की बात थी और मंशा थी, मशीयत थी, पूरी हुई। और इस तरह की बातें यूसुफ बतौर अताब जेल में रहे सही मालूम नहीं होती। फरमाया वकाल मालिक, और बादशाह ने कहा एक रोज दिन बादशाह ने, इन्नी अरा मैं देखता हूँ, मैं इन्नी अरा फिल मनाम, वही है कि मैं ख्वाब में देखता हूँ, जाहिर वही है बात है आगे वो से नजर, सबा बकरातिन जो है 7 गायें हैं, सिमान सिमान जो है मोटी मोटी ताजी, ये समन से, समन के मानी जो है उसी मोटा ताजा होता है, बकरा जो है बकरतुन की जो है वो वाहिद है, बकरात जो उसकी बहुत जमा है जो है, और ये समान जो है ये सिफ्त भी है, यानी कोई चीज अगर मोटी काली कलर्ड ब्लैक एंड व्हाइट या कुछ जो है दुबली पतली कुछ भी हो तो ये उसकी सिफात है, तो ये सिफात है। या कुल हन्ना याकुल वो खाती हैं, हुन्ना यानी हुन्ना नून जबरना का कोई तर्जमा नहीं है, गायें यानी वो फी गायें जो है फेमिनिन के लिए आता है, वो गायें खाती हैं सबा सबौन सात इजाफुन, वो दुबली पतली को जो दुबली पतली गायों को जो है वो खाती है, यानी सात दूसरी गायें लागे इजाफ जो है लागे दुबली पतली ये भी सिफ्त है, वह सबा सुम्बलातिन और सात खोशे हैं यानी अनाज की बालें जो होती है ना जो सिट्टा होता है बेसिकली, ये जो गंदम का या दूसरे अनाज का जो सिट्टा होता है अनाज का वो बाल बाली जो होती है तो वो सुंबल जो है कहलाता है उसको सुंबल कहते हैं, सुंबलातुन वाहिद है सुंबलातिन जमा है, तो सात अनाज की बालें हैं, खुदुरिन ग्रीन है सब्ज है, वो उखरा और दूसरी जो है याबिसातिन खुश्क है सूखी हुई है, तो जो है फरमाया कि वो खुश्क हम याबिसात को याबिस के मानों में पढ़ाए हैं, रत्बो याबिस हमने पढ़ा था खुश्को तर, ये जो है वो लफ्ज़ उर्दू में इस्तेमाल होता है रत्बो याबिस खुश्को तर जो है हर तरह की बात को, तो वो जो याबिसा सूखी हुई खुश्क है, सात हरी बालें बालियां हैं और सात जो है खुश्क है, या अयुहल मलाओ ए सरदारो ए अहले दरबार अफ्तूनी मुझे फतवा दो या मुझे बताओ पीरो या मेरे ख्वाब की रोया मेरे ख्वाब के बारे में मुझे बताओ, ये जो है वहां पे इस्तफ्ता था, देखे पूछना फतवा पूछना, या यहाँ पे है फतवा देना इफ्ता जो है बाबे फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब है, इस्तफ्ता जो है टेंथ फॉर्म ऑफ द वर्ब है, एक ही मादा है ठीक है, थोड़े से मानी में थोड़ा सा शेड बदल गया है, फतवा देना इफ्ता, इसलिए जितने दारुल उलूम के जो फतवा देने वाले डिपार्टमेंट होते थे उनको दारुल अफ्ता कहते हैं, आपके इल्म में होगा फतवा देने वाले डिपार्टमेंट, और इस्तफ्ता होता है फतवा पूछना, इन कुन तुम अगर तुम हो लिर रोया ए ताबुरून ख्वाबों की ताबीर, लिर रोया ख्वाब ताबुरून ताबीर बताने बताते हुए, अबरा याबुर इबारतन जो है ताबीर ये होता है अबूर करना, इसी से होता है एक 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 किनारे से दूसरे किनारे पे चले जाना ये अबूर होना होता है, तो इसका मतलब होता है मुकम्मल तौर पर कंप्रीहेंड करना किसी चीज को कंप्लीटली बता देना ताबीर बता देना कि मानी है आखिरी मानी, वकालू उन्होंने कहा यानी ये उन्होंने कहा अदगाफ तो अहलामिन, ये उन्होंने कहा कि ख्वाबों के परागंदा ख्याल हैं, ये लफ्ज दे अदगाफ जो है ये ख्याली परेशान बातें हैं, अदगाफ जो है ये जगस की जमा है, जगस कहते हैं कि अगर उलमा ने लिखा है कि अगर घास को की मुट्ठी को ले लें मुट्ठी भर घास ले लें जिसमें सूखी और जो है वो खुश्क और सूखी घास दोनों की मिक्स हो, यानी कोई चीज जो है तो इस तरह की जो मिक्स बातें होती हैं कि तो कोई इधर की कोई उधर की ना कोई सर ना पैर, तो वो फिर अदगास है जिसे कहते हैं परेशान ख्याली बातें, अहलाम जो है हुल्म की जमा है ख्वाब, तो ये वो ख्वाब है अदगास व अहलामिन, ये एक टर्म है ख्वाब हाय परेशान जिसका तर्जमा आप कर सकते हैं, वमा नखनु और नहीं है हम बेतावील अहलामे जो है ऐसे ख्वाब जो ख्वाबों की ताबीर बताने वाले से कुछ बे आलमीन यानी आलम बाखबर, हम कुछ ऐसे ख्वाबों की ताबीर से बाखबर नहीं है, ये कोई ऐसी ख्वाब सी परेशान सी बातें हैं जिनके कोई मतलब सर पैर ये इस तरह नहीं होता, इनकी कोई मानी नहीं होते इनकी कोई ताबीर नहीं होती, हम इसकी नहीं जानते इसकी कोई ताबीर, वकाल अल्लजी उस शख्स ने कहा नजा मिनुहा, किस शख्स ने कहा जो बच गया था नजा जिसने नजात ली थी मिन हुमा दोनों में से जो बच गया था, एक को फांसी हो गई दूसरा बच गया, उसमें से कहा वद्दा करा बाद उम्मतिन, उसने वद्दा करा ये जक करा है वद्दा असल में इसके बिल जाते हैं, तो इस वद्दा करा याद करना बादा उम्मतिन, तो उसने एक एक वक्त के बाद तवील अरसे के बाद जो है मुद्दत के बाद याद किया, ये है इद्दा करा असल में इस तकरा था, तो इस तकरा जो था ये ता को फिर दाल में बदल दिया गया और फिर जाल को दाल में मदगम कर दिया तो इद्दा करा बन गया, ये इस तरीके से ये जहां भी दाल और ता आ जाए तो फिर उनको जाल और ता आ जाए तो उसको उसको फिर उसका इदगाम कर देते हैं मिला देते हैं दोनों में दाल में बदल जाता है, डबल दा डबल दाल हो गया तो फिर उस दाल के ऊपर तशदीद हो गई और उससे पहले फिर अलफ जो है जाहिर उसको पढ़ने के लिए कोई लफ्ज तशदीद से शुरू हो तो जाहिर नहीं पढ़ा जा सकता, इससे उससे पहले अलिफ ज़ेर ए लाया तो इद्दा करा बन गया, निजात पाना रिहाई पाना। तो उसने याद किया जो है एक मुद्दत के बाद, रिहाई पाने के बाद, अना मैं उनब्बे हुकुम तुमको बताऊंगा, बेतावील ही उसकी तावील फरसलून, तो मुझे पस्त मुझे भेजो, यूसुफ के पास भेजो। ये उन्होंने कहा, उसने कहा इस आखिरी आयत में आयत की तरफ।
एक रोज बादशाह ने कहा, मैंने ख्वाब में देखा कि 7 मोटी गायें हैं जिनको 7 दुबली गायें खा रही हैं, और अनाज की 7 बालियां हरी हैं और दूसरी 7 बालियां सूखी हैं। अहले दरबार मुझे इस ख्वाब की ताबीर बताओ, और अगर तुम ख्वाबों का मतलब समझते हो। लोगों ने कहा, यह तो परेशान ख्वाबों की बातें हैं और हम इस तरह के ख्वाबों का मतलब नहीं जानते। उन 2 कैदियों में से जो शख्स बच गया था और उसे एक मुद्दत दराज के बाद अब बात याद आई, उसने कहा, मैं आप हजरात को इसकी तावील बताता हूँ, मुझे जरा कैदखाने में यूसुफ के पास भेज दीजिए।
जजाकल। अब बादशाह का ख्वाब, बादशाह ने देखा कि जाहिर है अब ख्वाब ने जिक्र ऊपर पढ़ लिया है। ये अब कई साल दरमियान का जो वक्फा था यूसुफ सलाम का, 8 साल का या 6 साल का या 5 साल का या 4, जितना भी था वो छोड़ दिया गया, और उसका जिक्र वहां से जोड़ा गया है जहां से हजरत यूसुफ सलाम को रूज शामिल होता है। तो अल्लाह ताला जब भी किसी बात को जहूर में लाना चाहता है तो ख्वाब वो कितनी ही बईदस क्यास हो, शख्स जेल में पड़ा हो, उसके असबाब खुद ब खुद जाहिर होने शुरू हो जाते हैं। और ऐसे ही हजरत यूसुफ के मामले में हुआ, तो उसने कहा कि बादशाह ने ख्वाब में देखा कि 7 मोटी गायें हैं, दुबली गायों को खा रही हैं, और 7 सब्ज बालियां हैं और दूसरी 7 खुश्क बालियां हैं। तो वो जो है ये भी इसी तरह हो सकता है कि 7 जो है खुश्क बालियां सब्ज बालियों को खा रही हैं, ये भी उसमें शामिल है। तो बादशाह ने इस ख्वाब की ताबीर पूछी, तो जितने भी दरबारी थे उन्होंने कहा कि हमें इसकी ताबीर का इल्म नहीं है, हम जो है ये ऐसी परेशान खान बातें, इसके बारे में आप फिक्रमंद ना हूं। बादशाह बहरहाल मुतमइन हुआ, तो बादशाह के साकी ने भी, जाहिर दरबार में ये बातें हो रही थी, साकी भी वहीं पे था तो उसने ये बातें सुनी, तो उसे कैद खाने का माजरा याद आ गया। उसने बादशाह और दरबारियों से कहा कि देखो मेरा जाती तजर्बा है कि इस किस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मेरे ख्वाब की ताबीर बताई और बिल्कुल वो सही ठीक जो हर बार साबित हुई। तो उसने बादशाह से कहा कि आप मुझे इजाजत दें कि मैं कैद खाने में जाकर उस शख्स से मिल के आता हूँ जो ख्वाब की ताबीर बताने में बड़ी महारत रखता है। तो बादशाह ने यूसुफ के पास उसको भेज दिया। अब बादशाह, सारा दरबार और सारा शहर जो है इस बात पे नजर लगाने बैठ गया, और उसकी नजरें उनकी लग गई कि आप देखें जेल के अंदर ये शख्स इस ख्वाब की क्या ताबीर बताता है। जहाँ पे हमारा ये सबक खत्म होता है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे ये किस्सा जारी है, तो इंशाल्लाह ताला ये आगे इसी से मजीद आगे चलता रहेगा, हम इसको जारी रखेंगे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इसके जो भी सबक पढ़ा, इसके मफाहिम को हमारे जहनों के बस सब फरमाए, और हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इसके भी बहुत सारे रमूज हैं, इस इनके भी और यहाँ भी लिखे गए हैं और आगे भी मतलब लिखे जा रहे हैं। तो देखें कि ये सारे के सारे लाजमी तौर पर पढ़ा करें, क्योंकि इसके अंदर हिकमत की सारी बातें जो है वो इनके अंदर मौजूद है, इनके अंदर।